الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في كبد، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم. میرے محترم دوستو اور پردہ نشین میری محترمہ مائیں اور بہنیں، کامیاب انسان کون ہے؟ کامیاب عورت کون ہے؟ کامیاب مرد کون ہے؟ قبر میں، قیامت کے دن اور اللہ کے سامنے کامیاب کون، اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو ہر حال میں اللہ رب العزت کے حکم پر عمل کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلتا رہے، دو کام ہیں، اس پر اللہ نے بھی قرآن میں وعدہ فرمایا ہے کہ یہ کامیاب انسان ہے، یہ اللہ کا محبوب بندہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں ایسے جال، کہہ دو ہم جال بولتے ہیں مچھلی پکڑنے کی، نیٹ یا پھندے کہہ دو جانور کو پکڑنے کا، ہر جانور کے پکڑنے کے الگ الگ پھندے ہوتے ہیں، کبھی شیر کو پکڑنے کا اور کبھی سانپ کو پکڑنے کا الگ انداز ہوتا ہے پھندے. تو انسان ان نیٹ میں، اس جال میں اور ان پھندوں میں پھنس کر رہ جاتا ہے، اور بڑے بڑے عقل مند لوگوں کو اس دنیا میں دھوکا لگ گیا، بڑے بڑے، اور ان کی ڈگریاں کتنی بڑی بڑی ہے، دنیا کی ڈگریاں ان کی پوچھو نا تو کسی کے پاس 5 ڈگری ہے، کسی کے پاس 6 ڈگری ہے، بڑے بڑے لوگ ہیں، سائنس میں کہاں ترقی کر گئے، کہاں سے کہاں، لیکن ان کو وہ ایسے پھنس گئے ہیں دنیا کی نیٹ اور پھندے میں کہ ان کے پاس اللہ کو یاد کرنے کی ایک منٹ بھی نہیں ہے، فرصت نہیں ہے. کہنے کو ذہین ہے، بڑے ہوشیار ہے، بڑے کلیور ہے، لیکن کبھی اللہ کے گھر کا دروازہ دیکھا ہی نہیں، کبھی مسجد میں آئے ہی نہیں. مولانا طارق جمیل صاحب سنا رہے تھے، مجھے بہت ہی تعجب ہوا. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ زیارت کے لیے جا رہا، عرب تھا، سو جو بھی سامنے آتا تھا اس کو گالی دیتا تھا عربی میں، وہ سمجھتا تھا یہ پاکستانی، اس کو کیا عربی آئے گی، اس کو نہیں پتا ہے کہ مولانا طارق جمیل نارمل انسان سمجھتا تھا، جیسے ہم لوگ جاتے ہیں تو جس کو عربی آتا اس کو تو پتہ ہی کیا بول رہا ہے، تو اگر چلاتے چلاتے کوئی سامنے ادھر ادھر تو اس کو عربی میں گالی دیتا تھا ڈرائیور. سو فرماتے ہیں کہ میں نے 2-3-4 منٹ صبر کیا، پھر جب یہ بہت زیادہ گالی دینے لگا سامنے والے کو تو میں نے اس کو کہا کہ تو بھائی کیوں گالی دیتا ہے، صبر کے ساتھ چلا. تو وہ سمجھ گیا کہ اس کو عربک آتی ہے، سمجھتا ہے. तो फिर मैंने उसके साथ अरबी में बात शुरू की। जब बात शुरू की तो मैंने उसको पूछा कि तू कहीं देहात से यहां पैसे कमाने के लिए उबर वगैरह टैक्सी वगैरह करने के लिए आता है, मक्का में चुके पैसे ज्यादा मिलते हैं, तो कहीं गांव से आया है? उसने कहा नहीं, मैं मक्का ही में रहता हूं। कहां रहता हूं? मक्का ही में रहता हूं, यहां का बॉर्न हूं मैं, मक्का की मेरी पैदाइश है। चूंकि आमतौर पर देहाती लोग ये ज्यादा उल्टा चलता बोलते हैं, तो उसने कहा तू हरम में रहता है, हरम में पैदा हुआ, तू इतनी गालियां बोलता है। उसने जो बात कही ना वो असल है, उसने कहा कि मैं यहीं पैदा हुआ लेकिन कई सालों से मैं हरम में नहीं गया, यानी काबा के पास ही नहीं गया, कभी मस्जिदे यानी काबा के नमाज पढ़ने के लिए नहीं गया। तो मैं उसके साथ ताज्जुब करने लगा, है तू हरम में रहता है तो कभी नहीं गया। कहा मुझ पर ताज्जुब ना करो, मक्का में ऐसे बहुत सारे हैं जो 10-10, 20-20 साल से नहीं गए और इंतकाल कर गए मेरी आंखों के सामने। वो दुनिया में ऐसे फंस जाते हैं कि उनको अल्लाह के घर आने का जान। अभी मैं जब हज में गया, अभी ग्रुप लेकर गया, अगले कई सालों से जाता हूं ग्रुप, उसमें कितने ऐसे होते हैं, चूंकि बातचीत होती है, चूंकि मैं उनका रहबर हूं, गाइड हूं, तो बातचीत तो होती है। कितने ऐसे हैं, 100 से ज्यादा है तो 150-160 आदमी होते, 100 से ज्यादा ऐसे हैं जिन्होंने मुझे कहा, इनसे पूछा मैंने, कहा हम 5 आदमी है, मैं फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, मेरी वाइफ, फुला फुला, कह रहे हैं कि सारी दुनिया का सफर किया हमने, कभी न उमरा के लिए हम मक्का गए न मदीना गए, जिंदगी में हमारा ये पहला सफर है, सारी दुनिया में गए। इसमें 100 से ज्यादा ऐसे जिनको पता ही नहीं कि तवाफ कैसे करना, कहां से शुरू करना है और कैसे करना, क्योंकि वो दुनिया के, आप देखो तो भाई तू क्या काम करता है, मैं ऑप्टिशियन हूं, तू क्या भाई डॉक्टर है, तू क्या, मैं वकील हूं, तू फुला मेरी बिजनेस है, कितनी 3-3, 4-4 दुबई में, फुला फुला मेरी बिजनेस है, कभी गया ही नहीं मक्का मदीना में, नहीं गया पहली बार। वो दुनिया, ये अल्लाह पाक ने ऐसे जाल रखे हैं दुनिया में, अल्लाह देखना चाहता है कि ये मछली इसमें फंसती है कि नहीं फंसती, या क्लेवर है, कितने अकलमंद है दुनिया में, बड़े बड़े हैं, कहने को बड़े जहीन है, लेकिन अल्लाह के घर का दरवाजा तक उन्होंने नहीं देखा। कितने होंगे आपके अतराफ में, कितने होंगे? वो इंसान ने, वो बेवकूफ इंसान, क्या ये मैं नहीं कह रहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, ज़ालिका बिअन्नहुम, अल्लाह कह रहे हैं बिअन्नहुम कौमुल ला याकिलून, ये वो लोग हैं जिन्हें अकल ही नहीं, अल्लाह कह रहे हैं ये इंसान देखने का है लेकिन इसमें अकल नहीं, अकल ही नहीं उसके अंदर। सो असल मकसद वो भूल गया और दुनिया के जाल में फंस गए, कभी अल्लाह को याद आया। अचानक फिर जब मौत आ जाती, अचानक जब बीमारी आ जाती, फिर परेशान क्या है। इसीलिए हकीमुल उम्मत हजरत मौलाना शिपली साहब थानवी रहमतुल्लाह ने फरमाते हैं, देयर इज टू टाइप ऑफ सिन, दो किस्म के गुनाह है, एक का ताल्लुक जाह से है। जाह से क्या मुराद है? मेरी माएं और बहनें बहुत कीमती चीज है, आप लोगों को अल्लाह यहां लाता है सुनने के लिए अल्लाह की बात को, ये बहुत बड़ी नमत है, जो लोग सुनते हैं ये अल्लाह की तरफ से तौफीक है, वरना हजारों लाखों बिजी अपने अपने दुनिया के काम में, अल्लाह ने आपको अपने दीन के सुनने के लिए और अमल के लिए कबूल किया। चलता है बंदा और बंदी अपने घर से अच्छे काम के लिए तो कदम कदम पर उसकी मगफिरत होती है, आते हुए रास्ते में हर पत्थर हर कंकर उसके लिए मगफिरत की दुआ करते, और जब तक बैठते हैं तो फरिश्ते उनके लिए मगफिरत की दुआ करते हैं। वो कह रहे हैं कि वो दुनिया का नहीं, मस्जिद नहीं, वो जन्नत के रास्ते की तरफ जाते हैं। वो जब तक उस बयान में, तफसीर में, मजलिस में बैठते हैं, वो जन्नत की क्यारी में बैठते हैं। वह जन्नत में बैठे हुए हैं। ये अल्लाह के नबी के सारे फरमान का तर्जुमा मैंने आपके सामने किया। तो जाह से मुराद वो गुनाह जिसका ताल्लुक इंसान मकाम दर्जा अपने आप को बलंद समझना, मैं बहुत बड़ा आलिम हूं, ये जाह है। जाह, मैं बहुत बड़ा मुफ्ती हूं, मैं बहुत बड़ा शेख हूं, मैं बहुत बड़ा मालदार हूं, मेरे पास बहुत है, मैं बहुत ही क्लेवर औरत हूं, बहुत ज्यादा काम करती हूं, मेरे अंदर में जो क्वालिटीज है वो किसी में नहीं है, इसको जाह कहते हैं। मुझे पहचानो, आरिफूनी अरबी में कहते हैं, मुझे पहचानो मैं कौन हूं। इसीलिए कह रहे हैं हमारा जैसा कोई है ही नहीं, मैं ही हूं। हमारे यहां फारसी में कहते हैं हम चुमन दीगर निस्त, हमारा जैसा दूसरा कोई नहीं, लेकिन दीगर को उलमा ने बदल दिया डंगर निस्त, हमारा जैसा कोई घड़ा ही नहीं। हम चुमन दीगर निस्त डंगर निस्त, दीगर को डंगर से बदल दिया, हमारा जैसा जो अपने आप को बड़ा समझता है वो इंसान बेवकूफ। ये बहुत बड़ा गुनाह है जो हर इंसान में कुछ ना कुछ होता है कि लोग मेरी तारीफ करें, लोग मेरी वाह वाह करें, लोग मुझे यानी ज्यादा ऊंचा बिठाए। ये खत्म करने के लिए अल्लाह वाले के पास जिंदगी गुजारनी पड़ती है, ऐसे नहीं जाता, ये जाता ही नहीं, ये मरते दम तक रहता है। ये गुनाह बहुत खतरनाक है। तो दूसरा, ये तो उसको कहते हैं जाह का गुना, जाह। दूसरा है बाह। बाह का माना है उसका ताल्लुक जो इंसान अपने आप को मुजरिम ही नहीं समझता, गुनेगार नहीं समझता, अपने आप को छोटा नहीं समझता, यानी राह रास्त पर अपने आप को समझता है कि मैं तो सीधे रास्ते पर चल रहा हूं, हालांकि गुमराह पर है। इसीलिए तकबुर का गुना इतना खतरनाक है। ला यदखुल जन्नत मन का, जन्नत की हवा तक नहीं लगेगी उस आदमी को जिसके अंदर में राय के दाने के बराबर प्राइड हो। जन्नत की हवा, जन्नत नहीं, जन्नत की एयर भी नहीं लगेगी उसको। उन्होंने एक आदमी ने खुद अत्तर लगाया, दूसरा आदमी वहां से उसको स्मेल कर सकता है, इसको स्मेल तक नहीं आएगी जन्नत की, इतना खतरनाक है। इसलिए हदीस में आता है डिस्ट्रॉय करने वाले, हलाक करने वाले बहुत सारे गुना, उसमें सबसे बड़ा गुना वह एजाबुल मर बेनफ्सी ही, मर्द या औरत अपने ऊपर उजब करे, मैं कुछ हूं, तकब्बुर। इसलिए सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला की दुआ बहुत अच्छी है, पढ़ा करो हमेशा। क्या दुआ करते थे? अल्लाहुम्मा जअलनी फी आईनी सगीरा, अल्लाहुम्मा जअलनी फी आईनी सगीरा। मर्द को भी ये दुआ करनी चाहिए, औरत को भी। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ये दुआ करते थे, ए अल्लाह मुझे मेरी आंखों में सबसे छोटा बना, मैं बड़ा नहीं, सारे बड़े, मुझे मेरी आंखों में छोटा बना, मेक माई सेल्फ लोअर देन एवरी। वो एक अंग्रेज आया था ना मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह के पास, उस जमाने में अंग्रेज की हुकूमत थी इंडिया में, वो आया घर पर, जाते थे उलमा को सर्च करने के लिए, गया कहा कि देख भाई ये डॉग है ना, ये मेरा कुत्ता, इज बेटर देन यू अशरफ अली, यार मेरा ये कुत्ता है ना तुझसे बेहतर है। तो मौलाना थानवी ने फरमाया अगर मेरी मौत ईमान पर ना हो तो तेरा कुत्ता मुझसे बेहतर है, तेरा साहब कहा कुत्ता भी जन्नत जाए। लेकिन अगर मेरी मौत ईमान पर आ गई तो मैं तेरे कुत्ते से बेहतर हूं। तुमने नहीं बात ये जवाब दिया था। कितना उनका दिल बना हुआ है। मैं और आप होते तो उसको फौरन क्या समझते। इसलिए आजकल जैसे कुछ थोड़ा सा नेकी कर लेते हैं और अपने आप को बड़ा समझ लेते हैं, चंद सुन्नत पर चंद नेकी के काम कर लेते हैं और अपने आप को खुद पसंदी में कि आई एम डूइंग समथिंग, मैं कुछ नहीं करता हूं, कुछ नहीं। हमसे तो बड़े बड़े लोग दिन में 70 तवाफ करने वाले, दिन में कुरान खत्म करने वाले, कई 100 नफले पढ़ने वाले गुजर गए। हमने क्या किया? कुछ नहीं किया। अब फजाइल सदकात में अमल पढ़ो ना, लोग कैसे कैसे गुजरे। हम तो ऐसे उनको देखे तो हमारी टोपी भी गिर जाए, ये तो बहुत बड़ा यार, हम तो उसके जूते के नीचे मिट्टी के बराबर नहीं है। ये हम बात कर रहे हैं नॉर्मल लोगों की जो अल्लाह वाले गुजरे हैं। सहाबा उलिया वो तो बहुत ऊंचे दर्जे के होंगे। तो हम किस दरख्त की मूली है कि अपने आप को खुद पसंद समझे। मैं 2-4 रकात पढ़ लू अपने आप को बड़ा समझू, ये बहुत बड़ा गुनाह है। खुद पसंदी इसको कहते हैं। ये नफ्स को मारना ऐसा नहीं है कि मैं जाकर उसको जैसे मुर्गे का गला दबाया मर गया, ऐसा नहीं है। नफ्स को मारने का मतलब ये नहीं कि जाकर मैं अपने पेट में कुछ दबाऊं ताकि ये कुचल जाए, ये मतलब नहीं है। नफ्स के मारने का मतलब ये है कि अपने अंदर की जो ख्वाहिशात है, जो क्या कहते हैं जा और बा है अपने आप को, इसको कंट्रोल कर लो। कंट्रोल कर गुस्सा, गुस्सा कैसी चीज खत्म कर। फरमाए सबसे बड़ा पहलवान वो है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो नहीं जो जाके अखाड़े में गिरा दे किसी को, बॉक्सर बॉक्सर को गिरा दे, वो पहलवान नहीं है। अल्लाह के नबी कहते जो गुस्से को कंट्रोल करे वो है सबसे बड़ा पहलवान। असल तो ये चीज है। अल्लाह के नबी कहते नफ्स को मारने का मतलब ये है, ये दुनिया तो खत्म हो जाएगी ना। वमा हाज़िहि हयातु दुनिया इल्ला लहु व लईब, खत्म हो जाएगी। ये पहले अल्लाह ने कुरान में कहा है, जिनको पता था कि ये तो काम आने वाला नहीं है अगले, इसलिए वो क्या कहते थे, अपने ऊपर दूसरे को तरजीह देते थे, प्रेफरेंस। वो जैसे वो हद के मैदान में एक साहबी फरमाते हैं कि मेरे रिश्तेदार शायद जख्मी हो गए हैं, नजर नहीं आ रहे हैं बची हुए लोगों में, शायद मैदान में पड़े हुए होंगे, तो जल्दी से पानी लिया, अगर वो थोड़े सांस बाकी हो मैं पानी पिला दूं उनको। वो ग्लास लेकर गए, पानी का बोतल लेकर गए, तो देखा तो वहीं पड़े हुए हैं जख्म के अंदर में, वुंडेड है पानी। हाँ, इतने में आवाज आई दूसरे साहबी की, वो उधर पड़े हुए पानी। तो उस साहबी जो जख्मी है उन्होंने कहा मुझे अभी नहीं, उनको पहले दो, उनको जाके पहले दो। ये सही है, सही वाकया है उहद के मैदान। इतने में तीसरे साहबी की आवाज आई पानी जख्म की आह की, उनके उनको दे दो। तीसरे दूसरे ने भी नहीं पिया, उसने कहा उनको, हालांकि उनको जरूरत है, तीसरे को दिया। तीसरे के बाद चौथे को दिया। 3 या 4 साहबा का जिक्र आता है जब उसने कहा नहीं उसी को, तो पहले वाले को, और पहले साहबी के पास है तो वो तो इंतकाल कर गए, दूसरे के पास गए वो भी इंतकाल कर गए। तो अब अल्लाह ने उसी वक्त आयत उतारी थी, बल तुसिरून अलहयात अद्दुनिया, ये दुनिया की जिंदगी पर तरजीह देते थे दूसरों को। अल्लाह तो क्या, बल तू सिरून हयात दुनिया, तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो, हालांकि दुनिया नहीं वाला आखिरत खैर है, बाकी रहने वाली तो आखिरत है, दुनिया नहीं है। सो ऐसे बहुत सारे, इसलिए अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हैं जिस शख्स ने दीन को दुनिया पर प्रेफरेंस देना शुरू किया उसने गोया दुनिया से थोड़ा पीछे जा रहा है और अल्लाह की तरफ आगे जा रहा है। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, अजीब बात, अल्लाह ने दुनिया बगैर मेहनत देने का वादा किया और हम दुनिया समेटने के लिए मेहनत करते हैं। अल्लाह ने कहा ना, तू मरेगा नहीं जब तक मैं तेरी तकदीर में जो रोजी लिखी है वो पहुंच न जाए। जब मेरी मौत आएगी ना, उस वक्त फरिश्ते स्पेशल आएगा, वो कहेगा अब तेरा सांस एक भी बाकी नहीं, मैं भी दो तीन उखड़े उखड़े हैं अभी, यहां से नीचे जाता ही नीचे, आखिर निकलने की तैयारी, वही सांस जो बाकी है, और कहा अब तेरे लिए खाने का कोई लुकमा बाकी नहीं है, खत्म हो गया, अब पानी का घोंट भी बाकी नहीं, वो पिलाते हैं ना जमजम भी तो आधा बाहर रहता अंदर निकल जाता है, तो उसने कहा पानी है ही नहीं उसके लिए, अल्लाह ने जो मुकद्दर में लिखा तो उसको मिल गया, कहा अब तेरा दुनिया में कुछ बाकी नहीं, अब तेरी मौत आएगी। इसलिए मौत से पहले रोजी पहले आती है, मौत बाद में आती है, याद रखो दोनों चीजें पीछा कर रही है, तेरी रोजी भी तेरी मौत भी पीछा कर रही है, ये सही हदीस है। इसलिए कि रिस्क खत्म होगा तो ही मौत आएगी, लेकिन रिस्क आगे है। तो एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि ताज्जुब है उस बात पर कि अल्लाह ने दुनिया बगैर मेहनत की, एक तो असबाब की मेहनत है और एक ऐसी मेहनत है, मेहनत की भी दो किस्में हैं, एक वो मेहनत है जो जरूरी है, इंसान कमाने के लिए चला गया, इंसान कुछ जॉब पर लग गया, ठीक करो हलाल के लिए, लेकिन एक ऐसी है कि वो मेहनत ऐसी कर रहा है, उसके पीछे ऐसा लगा हुआ है कि अल्लाह को भूल गया, नबी के तरीके को भूल गया, ऐसा लगा हुआ है, जबकि उसके मुकद्दर में वही मिलेगा जो लिखा हुआ। इसलिए सबसे बड़ी बात यही है कि अपने आप को खुद पसंदी से बचाओ, अगर तुम अल्लाह को याद करोगे, अल्लाह के सामने झुकोगे, तो अल्लाह दुनिया के बादशाहों के लिए गुलाम होते हैं और अल्लाह वालों के खादिम बादशाह होते हैं, उनके मालदार लोग, अल्लाह पाक उनको भी झुका देता है। हाँ, नहीं देखा कई ऐसे वाकियात है, बड़े बड़े मालदार लोग, वक्त के बड़े हाकिम लोग उलमा के सामने बैठे हुए, जाकर देखना अल्लाह को, ये अपनी आंखों से देखा हुआ वाक्य मैं कई ऐसे सामने, और कोई परवाह नहीं। हमारे शेख यूनुस साहब नव्वर अल्लाह मरकदहु, बहुत बड़ा मालदार, बहुत बड़ा मिलियनर, और ऐसा हदिया दिया, नहीं चाहिए, निकालो नहीं चाहिए, ना दे दिया सबके सामने, नहीं चाहिए तुम्हारा, उसको ऐसा घमंड था कि बस हमारा हदिया देंगे हजरत, नहीं मेरे आंखों के सामने, फिर थोड़ी देर मैं घबरा गया, क्योंकि मैं तो हजरत के साथ, मेरे शेख थे उनके साथ बैठते, मैं साथ साथ, फिर मैंने अपना लिफाफा निकालते निकालते मैं डरता रहा, शायद मेरा भी ना कह दे, मैंने ऐसा निकाला, उसके पास तो बड़ा था, मेरे पास तो 40-50 पाउंड होंगे, मैंने दिया ऐसा, अरे 13 ले लूंगा, उसकी इसलाह ऐसी हुई उस आदमी की कि वो दीन की तरफ नहीं आता था, अल्लाह वाले देख कर पहचान लेते, ऐसे बैठे और एक आदमी आया, सारे मुलाकात करते हैं, एक आया बकरे से बोला करता है, देखा गया उसको, बाद में उसने बताया हाँ मैं बड़ा गुनहगार हूं, अल्लाह से दूर, मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं, ये करता हूं, देखा उसको जाओ तो बकर यहां से नहीं देखते, यहां से देखते। इसलिए हमें याद है, आप समरकंद गए होंगे, बुखारा समरकंद में तो गया था, वहां मैंने वहां देखा है, ये अमीर जो तैमूरलंग है ना, तैमूरलंग अमीर तैमूर, उसका मकबरा मैं देखने के लिए गया था, मैंने कहा चलो ना, ये वक्त का बहुत बड़ा बादशाह था जिसने पूरा ये उज़्बेक जो है ना उसने जीता था, उसकी कब्र वहां, उसके मर जो ये मकबरा है ना, उसका जो उसका कब्र है ना, दरवाजे पर अमीर आलम की कब्र है, किसकी खबर है? उनके उस्ताद की, उस्ताद क्या बल्कि उसके शेख अमीर आलम वहां लिखा हुआ था। अब इसका नाम वक्त का, इसको कहते थे फातह दुनिया, उस भी पर बहुत मानते इनको अमीर जमुना को, कि उसने तो ये सब फातह किया था, फतह किया था। सो ये कबर उसके नीचे है, ऐसी ये कबर है, उसके ऊपर ऐसा ऊंचा है, वहां एक और कबर है। मैंने कहा ये कैसा, बादशाह नीचे है, ऊपर किसकी कबर है? उसके सर के ऊपर। सो पूछा, फरमाया फातह दुनिया तो ये बादशाह है, दुनिया को बड़ी बड़ी जगह फतह करने वाला ये बादशाह है, इसकी कबर ऊपर होनी चाहिए, नीचे कबर है। तो वहां के शेख ने मुझे बताया कि ये उसके शेख की कबर है। इसकी कबर है जिनसे ये बैत था, मरने के बाद भी शेख आगे है। मैंने खुद देखा है उसको, कभी जाना हो उज़्बेक का सफर हो देखना, वहां तो बहुत अच्छे अच्छे देखने की चीज है। एक कब्रिस्तान में हम गए थे, वो तो खत्म कर दिया इन लोगों ने, दुश्मनों ने पूरा बुलडोजर चला दिया कब्रिस्तान के अंदर, सारी कब्रें खत्म। उसमें 500 मुहद्दिसीन की कब्र थी, कितने 500। उस कब्रिस्तान में यूं कह सकते हैं हम कि पहला नंबर मक्का के जन्नतुल मौला है, फिर जन्नतुल बकी है, नंबर 3 पर इसका आता था। क्यों? इसलिए कि इसमें 500 वो मुहद्दिस की कबर थी और किसी की नहीं, जिसके अंदर में 2 शर्त हो, एक तो उसका नाम मोहम्मद हो और एक उसको 1,00,000 हदीस याद हो मुंह पर। ये 2 शर्त हो तो इस कब्रिस्तान में दफन होते थे। ऐसे 500 मुहद्दिस उसमें दफन थे। उसमें 4-5 के तो खुतबा जो होता ना वो लगाते हैं, हमने खुद देखे, दुश्मनों ने बुलडोजर चला दिया। सबसे बड़ा इसीलिए हिदायत जो हमारे यहां पढ़ाई जाती है ना, ये भी वहीं के रहने वाले हैं, इनको भी 1,00,000 हदीस याद थी, लेकिन उनका नाम मोहम्मद नहीं था तो उनको वहां दफन होने नहीं दिया। 1,00,000 हदीस याद तो यहां सिर्फ वही चीज। इसीलिए उसमें बाद मुहद्दिस तो वो थे दफन हुए, उन्होंने बताया शेख ने कि उनके 10 जनरेशन तक मोहम्मद नाम था, मोहम्मद इब्ने मोहम्मद इब्ने मोहम्मद इब्ने मोहम्मद, बाप का नाम, दादा का नाम, सबका मोहम्मद। ये वो जगह जहां इमाम बुखारी पैदा हो, इमाम तिर्मिजी पैदा हो, दूसरे इमाम तिर्मिजी पैदा हो, बड़े बड़े। ये जो सिलसिला है ना, 4 सिलसिले है ना, एक तो चिश्तिया, एक तो कादरिया, एक तो सहरवर्दिया और एक नक्शबंदी। नक्शबंदी के सारे औलिया वहां कबर है, यहां एक, वहां एक, वहां एक, सारे नक्शबंदी और औलिया किराम वहां सोए हुए हैं। पूरा सिलसिला है, सारे की कबर पर हम गए थे, बहुत सारे कहां कहां, बड़े बड़े अल्लाह वाले सोए हुए। सो दुनिया की हकीकत लोगों को पता नहीं, ये ऐसे जाल में फंसे हुए हैं कि वो अल्लाह को भूल गए। हजरत ख्वाजा मोहम्मद मासूम रहमतुल्लाह अलैह सरहिंद कभी गए हैं? सरहिंद जाओ, ये बहुत अच्छी जगह है, ये उनकी कबर वहां है सरहिंद में, ख्वाजा मोहम्मद मासूम रहमतुल्लाह। उनके मकबरे में जाना हो, जाने के लिए बहुत लंबा रोड है, ऐसा है, पक्का रोड है, ऐसे कुशाल, लेकिन आगे चलकर उस रोड के 2 हिस्से हो जाते हैं, ऐसे ये पूरा जैसे फ्रीवे जा रहा, फिर 2 हो जाते हैं। आपने कभी गए हो तो देख लो, बीच में मकान आते एक आदमी का, तो कैसे 2 हो जाते, इधर से आने का इधर, ऐसे 2 हो गए, पहले से 1 है, इधर गाड़ी, बाद में क्या हो जाता है ऐसा, फिर जाके मिल जाता ये बीच। क्यों? इसलिए कि उस सड़क को 2 हिस्सों में तकसीम करके बाद में आगे 1 कर दिया, बीच में ऐसे अलग किया, फिर 1 कर दिया, ऐसे 1 साथ आता है, ऐसा फिर ऐसा। क्यों? बीच के अंदर ने वहां के लोगों से पूछा गया कि भाई इतनी अच्छी सीधी सड़क जा रही है, सिर्फ इस कबर की वजह से उसके 2 टुकड़े करके उस बीच में छोड़ करके आगे फिर मिलाया गया, क्या वजह?
क्या स्वर्ग बाद में बनी या कबर बाद में बनी?
तो भी सर, पहले कबर हो बाद में स्वर्ग बनी हो।
तो वो कहने लगे कबर बाद में बनी।
कबर क्या है?
बाद में बनी है, पहले स्वर्ग बनी जी। सो क्यों इसको दो हिस्सों में ऐसा किया गया? जबकि स्वर्ग बाद में बनी, कबर बाद में बनी, तो कबर तो पहले स्वर्ग तो इसी दी बनानी चाहिए थी, बाद अंदर में क्यों ऐसा दो हिस्सों में तकसीम किया? तो कहा यहां पर अफगानिस्तान का एक बादशाह की कबर है, उसको दफन किया गया। किसको? अफगानिस्तान का एक बादशाह था और वो हजरत ख्वाजा मोहम्मद मासूम का मुरीद था। जिसका? हजरत ख्वाजा। उसने वसीयत की थी जब मैं मरूं तो मुझे अपने शेख की कबर के रास्ते में दफन करना, कबर के पास नहीं, कबर के नहीं, मेरे शेख जिस रास्ते से जाते थे उस रास्ते में दफन करना। इसलिए कबर तो बाद में बनी लेकिन हम सड़क को उसके दो टुकड़े इसलिए कर दिए बीच में कि यहां से शेख जाते थे और उसकी वसीयत थी कि मेरे शेख जहां से जाते थे उस रास्ते पर मेरी कबर बनाना। अल्लाह वाले जब अल्लाह के पास चले जाते हैं, यानी अल्लाह से मिलते हैं, अल्लाह से ताल्लुक करते हैं, ये कोई ऊपर से नहीं आते नेक लोग। ऐसा जरूरी भी नहीं है कि आलिम हो, मुफ्ती हो, शेख हो। हाजी इमदादुल्लाह कहां आलिम थे, कहां मुफ्ती थे, कहां शेख थे, वो तो हाफिज थे लेकिन उनकी खिदमत में बैठने वाले मौलाना रशीद अहमद गंगोई है, कासिम ननोतवी है, मौलाना थानवी है, शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह, महमूद हसन गंगोई है, बड़े 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 वहां बैठते हैं। क्या वजह है? थे आम आदमी लेकिन उनका ये अल्लाह से मिला हुआ ये चीज अल्लाह हर एक को मिला देता है लेकिन जो आवे तो ये असल चीज है। इसलिए अल्लाह वालों की इज्जत दायमी होती है और ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ मर्द में हो। मुझे एक शेख आए थे यहां ड्यूसबरी में गया था, उनको 207 बड़े बड़े पुराने अल्लाह वाले यानी उलमा शेखुल हदीस बड़े बड़े उनसे उनको इजाजत थी। कितने? 207 से। उसमें 200 तो आलिम थे, शेख थे जिनसे इजाजत थी इनको, और 7 वो औरतें थी जो बड़ी बड़ी हदीस की हाफिजा थी, उनसे भी इनको इजाजत थी। औरतें लेकिन बड़ी है। इमाम मालिक रहमतुल्ला इस शेख ने फिर मुझे पूरा इजाजत दे दी कि आपको मैं 207 शेख की इजाजत दे देता हूं। वो दमिश्क के एक आदमी आए थे शेख, उन्होंने मुझे कहा पूरी दुनिया के शियुख से मैंने इजाजत ली, मैं आपको देता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह। इमाम मालिक रहमतुल्ला अलैह के सामने तलबा पढ़ते थे हदीस को, जैसे हम पढ़ते हैं मदरसे, वो पढ़ता चला जाता है बुखारी शरीफ मुस्लिम शरीफ, पीछे से आवाज आती थी ऐसे बोलते नहीं थे, यानी उनकी बेटी पीछे मुहद्दिसा बैठी है, मुहद्दिसा थी, वो कहती रही तालिब इलम ने इबारत में गलती की है, ठोक दीजिए से पढ़ाओ, फिर पीछे बैठी है औरत है, दोनों बेटियां मुहद्दिसा। समझ आई? तो आज भी औरतें अल्लाह के करीब हो सकती है, मर्द अल्लाह के करीब हो सकते हैं। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जब बंदा अल्लाह से करीब होता है, अल्लाह से मोहब्बत करता है, तो अल्लाह उसको छोड़ता नहीं, उसको अपना बना लेता है, अपने करीब कर लेता है। इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दुआ बहुत अच्छी है, अल्लाहुम्मा अहयिनी मिस्कीना व अमितनी मिस्कीना व अहशुरनी फी ज़ुमरतिल मसाकीन। हम मिस्कीन का लफ्ज बोलते हैं तो उसको समझते हैं जिसके पास कुछ ना हो, हम मिस्कीन किसको समझते हैं? फकीर लोगों उसको मिस्कीन, लेकिन यहां वो मिस्कीन नहीं, मिस्कीन से मुराद जिनको दुनिया से ताल्लुक नहीं, अल्लाह से मोहब्बत हो, उसको मिस्कीन कहते हैं। اس لیے کہہ رہے اللہ مجھے مسکینوں میں زندہ رکھنا, اللہ کے نبی فرماتے ہیں, اور مسکینوں کے ساتھ موت دینا اور قیامت میں مسکینوں کے ساتھ مجھے اٹھانا. کون کہہ رہے؟ امام الانبیاء کہہ رہے ہیں. یہ نہیں فرما اللہم احیینی صدیقا, مجھے صدیق کے ساتھ زندگی دے. یوں نہیں کہ اللہم احیینی صالحا, مجھے صالح لوگوں کے ساتھ زندگی دے. اللہم احیینی عابدا, او بہت عبادت کرنے والوں کے ساتھ مجھے زندگی دے. نہیں, صدیق میں تو اظہار ہوتا ہے نا, یہ صدیق ہے, عالم ہے, یہ عابد ہے, بڑا نماز پڑھتا ہے. لیکن فرما مسکین ہے جس کو کوئی جانتا ہی نہیں, لیکن اندر میں اللہ اللہ کنیکشن اللہ کے ساتھ کوئی نہیں جانتا, ایسا بیٹھا ہے, ایسا لگتا ہے بیٹھا ہوا, لیکن اندر میں اللہ سے کنیکشن ہے, اس کا دل اللہ اللہ کر رہا ہے, سانسوں کے ساتھ, کسی کو پتا ہی نہیں, ایسا چلتے ہوئے کام کرتے ہوئے جاب پر ہر جگہ اللہ اللہ کر رہا ہے. اسی لیے ایک مرتبہ فقیروں کی محفل میں, یعنی مسکینوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اے فقراء, اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں تین چیزیں عطا فرمائیں گے. وہی مسکین بات کر رہا ہوں جن کا لگن کیا دل اللہ سے ملا, تین چیزیں عطا فرمائیں گے جو بڑے بڑے مالدار کو بھی عطا نہیں کریں گے. سب سے پہلی چیز, قیامت کے دن تم لوگ مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے. 500 ایئرس. وہ بھائی وہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. ایک دن 50,000 سنا قرآن میں ہے, 5,000 سال 50,000 سال کے برابر. اب اندازہ کرو 500 سال کے ٹائمز 50,000 سال, کب جائیں گے وہ مردہ. دوسری بات, فقیر اور مسکینوں کو اللہ تبارک و تعالی تسبیح, ہم تو فقیر اس کو تو باہر مانگتا ہوں, نہیں نہیں نہیں, صحابہ مانگتے تھوڑے تھے, یعنی اللہ کے ساتھ ایسا کنیکشن تھا ان کا. فرمایا تسبیح پڑھنے پر اللہ ان کو وہ دے گا جو مالداروں کو مال خرچنے پر نہیں ملتا, اللہ اتنا دیتا. اور اتنے بڑے محل دیں گے ان کو اللہ پاک کہ مالدار لوگ نیچے سے دیکھیں گے جیسے ہم دنیا سے آسمان کے ستارے دیکھتے ہیں, کتنی اونچے ستارے, ایسے ان لوگوں کو اللہ پہلے درجہ دے گا. اس لیے اللہ والوں سے دوستی رکھا کرو, نیک اور صالحین کے ساتھ پائس عورتوں کے پاس بیٹھا کرو. قیامت کے دن پوچھیں گے کیا ہے, المرء مع من احب, قیامت کے دن تم کو اٹھایا جائے گا اس کے ساتھ جس کے ساتھ تم کو محبت تھی. سمجھے کتنے ہیں جو ایسے دامن پکڑے ہیں نیک لوگوں کے, چھوڑتے ہی نہیں, نیک لوگوں کے دامن ایسا پکڑ چھوڑتے ہیں. اس لیے اللہ قیامت کے دن ایک مسکین سے فرمائیں گے جنت میں داخل ہو جا, لیکن وہ کھڑا رہے گا نہیں کھڑا. فرشتے اسے پوچھیں گے آپ کو تو پرمیشن مل گئی ٹو انٹر ان جنت, کیوں کھڑے یہاں, جانا بھائی. ایک آدمی کو ٹکٹ مل جائے تو چلا جاتا ہے نا, ٹرین میں بیٹھ جاتا ہے, ایک اس کا انتظار کر رہا جاتا ہی نہیں. تو وہ کہے گا مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں اکیلا جنت میں چلا جاؤں, جن لوگوں نے مجھے کھلایا پلایا صحیح راستے پر لگایا ان کا انتظار کر رہا ہوں, ان کو لے کر جاؤں گا. یہ چیز, اس لیے بات چل رہی تھی مکھی کے پر ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے بتاؤ, فلائز ونگز ہے کہ نہیں, لیکن کبھی تم اس کو پروانہ کہتے ہیں, پروانہ کس کو کہتے ہیں خبر ہے, اب آگ جلاؤ رات میں اور لوگ پٹنگے ہوتے ہیں نا وہ اڑتے ہیں, اس کو ہم پروانہ کہتے ہیں. مکھی کو کوئی, اس کے بھی پر ہے ان کے بھی پر ہے, لیکن مکھی کو کوئی پروانہ نہیں کہتا, لیکن ان پتنگے کو لوگ کہتے ہیں پروانہ ہے, یہ اڑتے ہیں پاگل ہے, آگ میں گرتے ہیں جان بوجھ کر. آپ گاڑی رات میں کہیں جنگل میں چلاؤ نا تو آپ کی لائٹ کے سامنے اڑتے ہیں, یہ پروانے ہیں, مکھی نہیں ہوتی وہ, मक्खी के भी पर है, उनके भी पर है। सो क्यों? इसलिए कि मक्खी का मतलूब और मकसद और पर्पस इंप्योरिटी नजासत है, नापाकी पर बैठ गया, नजासत है। और पर होने के बावजूद उसको परवाना नहीं कहते। सो दुनियादार बंदा दिल तो है उसका, तो मेरी बात समझते हैं, दिल तो सबके पास है, मालदार के पास भी है, लेकिन उसका मतलूब दुनिया है, वो दुनिया की नेट में फंस चुका है, और इसलिए उसको अहले दिल नहीं कहते, अहलुल्लाह नहीं कहते। अहले दिल किसको कहते हैं? जिसका दिल किसके साथ लगा हुआ हो, अल्लाह के साथ लगा हुआ, उसको अहले दिल कहते। हर एक पहले दिल नहीं कहते, भाई ये बहुत अल्लाह वाला है, कहते ना भाई बहुत अल्लाह वाला है। सो जिनका दिल अल्लाह की मोहब्बत में लगा हो उनको कहते हैं हम अहलुल्लाह। सर बात चल रही थी हमारी कि लकद खलक मेरे इंसान फी कबद, और उसके बाद जो मैंने हदीस पढ़ी कि उसका मतलब यह है कि जर्रा बराबर भी खुद पसंदी हो, अपने आप को बड़ा समझे, वो कभी जन्नत में, जन्नत में जाना तो उसकी हवा भी नहीं लगेगी। इसलिए खुद पसंदी छोड़ो, तकब्बुर छोड़ो, अपने आप को बड़ा समझना छोड़ो। और बात सबसे बड़ी यही है कि दुनिया की जाल में फंसने की बजाय दुनिया में जितनी जरूरत है मेहनत करते, पैसे कमाओ हलाल के, कोई ना नहीं कहता, खूब कमाओ, लेकिन जहां अल्लाह का हुक्म आए तो अल्लाह के हुक्म को प्रेफरेंस दो दुनिया के ऊपर। पहले अल्लाह की तरफ जाओ, बाद में दुनिया की तरफ। अल्लाह पाक हम सबको, मेरी माएँ और बहनें, हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाएं। और हमेशा हमेशा याद रखो, इज्जत दीन के अंदर में है, दुनिया में नहीं है। इज्जत किस में? दीन के अंदर है। हाँ, सो अल्लाह से दुआ करते रहें, अल्लाह तबारक व ताला हमारे इकट्ठे होने को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला उसके बदले में हम सब की बख्शिश फरमाए, और हम सब को भी नेक अमल करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह व बिहमदिही, अल्लाहुम्मा या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिक वलअज़ीम सुल्तानिक। ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا اللهم ہم سب کا آنا بیٹھنا سننا قبول فرما تھوڑی دیر کے لیے ہم تیرے لیے جمع ہو جاتے ہیں اللہ اللہ ہمارا بیٹھنا اس کو 24 گھنٹہ بیٹھنے کا بلکہ پوری زندگی کے لیے ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا دے اے اللہ ہمارا آنا چلنا بیٹھنا اور قدم قدم کو اللہ مغفرت نجات رحمت اور عافیت کا ذریعہ بنا دے عفو عافیت کا معاملہ فرما بڑے گنہ گار ہے اللہ معاف فرما خود پسندی سے تکبر سے عجب سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہم سب کو مسکین جیسے بنا دے نیک لوگوں جیسے بنا دے اللہ ہم سب کو اے اللہ اپنے محبوب بندوں میں سے بنا دے الہ العالمین یا اللہ جو بیمار ہو اس مجمع میں گھروں میں اے اللہ سب کو شفا سب کو عافیت عطا فرما سب کو سکون نصیب فرما سب کے گھروں سے جھگڑوں کو ختم فرما بہت سے لوگ دعا کے لیے کہتے ہیں کہلواتے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما جن کے آپریشن ہونے والے ہیں بہت سے لوگوں نے کہا اللہ ان کے آپریشن کو کامیابی عطا فرما اے اللہ جلد گھر پر جلد ان کی ملاقات گھر والوں سے کروا دے اے اللہ ان کے اے اللہ جتنے بھی پریشانی ہیں ختم فرما مشکلوں کو آسان فرما جو ماں باپ اپنی اولاد سے دور ہے اللہ ان کو ماں باپ کا قریب کر دے ماں باپ کا محبوب بنا دے ماں باپ کی خدمت گزار بنا دے فرما بردار بنا دے اے اللہ جو شوہر اپنے بیوی سے بیوی اپنے شوہر سے دور ہے اللہ قربت نصیب فرما اے اللہ خوب حلال روزی نصیب فرما خوب حلال روزی نصیب فرما اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا عالم دین بنا عاشق دین بنا صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین